ओम शांति। सुबह के सत्र में आप सभी दो दिन से राजयोग के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और राजयोग करने की विधि बहुत सहज है। उसमें केवल तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो पहले दिन में आप सभी ने सुना, वो है स्वयं का यथार्थ पहचान, यथार्थ परिचय, जो आत्मा के बारे में था। और सेकंड स्टेप है परमात्मा को यथार्थ रूप से समझना, पहचानना। और तीसरा स्टेप जो आज हम देखने जा रहे हैं, तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हम कैसे जोड़े। बचपन से ही पेरेंट्स के द्वारा घरों में हमें सिखाया जाता है परमात्मा को याद करने की। अपने ही तरीके से विभिन्न प्रकार से हम परमात्मा को पुकारते, पूजते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरापन, जो जिस रीति से हमें प्राप्ति की अनुभूति होना चाहिए, उस रीति से शायद अभी तक नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन में वो राइट कनेक्शन नहीं जुड़ा है, या फिर लीकेज है, या फिर रॉन्ग तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इस राजयोग के अभ्यास से कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन यहां बहुत ही स्ट्रांग है। प्रॉपर कनेक्शन होने के कारण से फिर वो एनर्जी फ्लो जो है, वो कम समय में ही ज्यादा हम अनुभव कर सकते हैं। राजयोग शब्द को अगर हम देखें, योग उसको समझने की अगर कोशिश करें, योग का मतलब क्या है? क्योंकि योग के बारे में जब हम लोगों से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं योग के बारे में, लोगों को लगता है हठ योग, जो व्यायाम करते हैं वो एक प्रकार से योग है। वो तो ठीक है, वो हठ योग है। शारीरिक व्यायाम हर एक को जरूरी है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए उसकी आवश्यकता है। लेकिन योग शब्द का यथार्थ अर्थ है जोड़, कनेक्शन। उसका विपरीत शब्द है वियोग। वियोग माना अलग हो जाना, बिछड़ जाना। जब भी हम अचानक किसी से मिलते हैं जिनके बारे में हम याद करते थे और अचानक मिल गए, तो क्या कहेंगे? योग था, मिले, है ना? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था, तो इसीलिए हम मिले। माना योग शब्द का अर्थ है कनेक्शन, मिलन। बचपन से लेकर के हम अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ हमारा योग जुड़ा हुआ है। मानसिक योग, स्थूल रूप से अगर योग देखा जाए तो दो वायर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं वो भी योग है। क्योंकि जब दो वायर्स कनेक्ट करते हैं तो फिर बिजली का संचार होता है, है ना? वो स्थूल रूप से है। और दूध में जब चीनी मिलाते हैं वो भी एकदम घुल जाता है, उन दोनों चीजों का योग हो गया। लेकिन अभी हम किस चीज का योग के बारे में बात कर रहे हैं? आत्माओं का, आत्माओं के जो भी योग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बचपन से लेकर के वस्तुओं को याद करते आए हैं, गाड़ी, बंगला, जो भी चीजें हैं, जब हम उन चीजों को याद करते हैं, उन चीजों के साथ हमारा योग जुड़ा। और लोगों को जब हम याद करते हैं, उन लोगों के साथ, उन आत्माओं के साथ हमारा योग जुड़ा। जिस घर में हम जन्म लिए हैं, जिन लोगों के आसपास हम हैं, उन सभी लोगों के साथ हमारा योग है। इसके कारण से ही हम उनके इर्द गिर्द हैं। ये हुआ लोगों का, आत्माओं का, आत्माओं के साथ योग। लेकिन यहां जब हम राजयोग की बात करते हैं, वो है परम आत्मा के साथ योग, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ योग है। जब चीजों को याद किया, वह शांति, आनंद, सुख की अनुभूति नहीं होता है। जब लोगों को याद करते हैं, वहां भी अलग अलग प्रकार के इमोशंस। अगर सुखद रिलेशनशिप है तो वहां खुशी, आनंद वो अनुभव होगा, लेकिन अगर टेंशन वाला संबंध है, उस व्यक्ति को याद करते ही टेंशन बढ़ जाता है ना। तो इंसानों के साथ योग लगाने से आत्मा की उन्नति होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। हाँ, अपने से हायर लेवल की आत्माएं हैं, उनके साथ जोड़ने से हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर अभी हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ लगाना, वो उन लोगों, वो लोग भी जो हायर क्वालिटी लेवल वाले जो आत्माएं हैं, उन्होंने भी अपना एनर्जी हायर कैसे किया? परमात्मा के साथ जोड़ करके अपना कनेक्शन, उनकी एनर्जी को बूस्ट किया है या फिर उच्च स्तर तक लेके गए हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो हम भी क्यों ना उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके हम भी उस लेवल में अपने एनर्जी लेवल को ले जाएं। तो इसको राजयोग कहते हैं। इस राजयोग के द्वारा होता क्या है, राजयोग करने की जरूरत क्या है, आप क्यों सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, आप क्यों सीखना चाहते, सुबह सुबह उठ करके भाग भाग के आप सब यहां के बैठे हैं सीखने के लक्ष्य से, क्यों सीखना चाहते हैं मेडिटेशन? मन की शांति के लिए और परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए। परमात्मा के साथ क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? हाँ, सुप्रीम पावर है, लेकिन कनेक्ट क्यों करना है? हम चाहते हैं वो पावर्स हमारे अंदर आए। और वो पावर्स आने से होगा क्या? मन की शांति मिलेगी, और क्या होगा? समाज का कल्याण वो तो होना ही है, लेकिन पहले तो अपना कल्याण करें, पहले अपना कल्याण करें तो विश्व कल्याण तो ऑटोमेटिक होगा। बूंद बूंद से सागर बनेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे बदले तो मैं बदलूं, नहीं। यहां जो स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मुझे खुद को बदलना होगा, है ना। इस मेडिटेशन के द्वारा मन की शांति तो मिलेगा, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है। क्यों? जब तक आप मेडिटेशन में बैठे हैं, तब तक आपको शांति की अनुभूति है, लेकिन जैसे ही आप कर्म क्षेत्र पर उतरे, वहां तो तनाव है, लेकिन क्या वो शांति कर्म क्षेत्र पर भी आप उसको अनुभव कर सकते हैं? ये है राजयोग का रिजल्ट। केवल जब तक बैठे हैं तब तक शांति, वो तो सब करेंगे, लेकिन वो कर्म में दिखाई दे। मेडिटेशन क्यों करना है? अल्टीमेट लक्ष्य क्या है इस राज्यों का? संस्कारों में परिवर्तन। क्योंकि जो भी शांति है, जो भी ये, जब तक आप यहां हैं आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस ऐसे हैं, आप अच्छी तरह सुन रहे हैं, इतनी ज्ञान की बातें और लेन देन इतना अच्छा कर हो रहा है, तो यहां तक, यहां जब तक है तब तक आप सबके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा। लेकिन कर्म क्षेत्र पर उतरते ही कैसा रहेगा, है ना? तो वो केवल टेम्पररी परिवर्तन नहीं, हमेशा के लिए मेरा संस्कार परिवर्तन हो जाए, ये है लक्ष्य मेडिटेशन का, है ना? तो इसीलिए कहा इसको राजयोग, राजयोग, राजयोग माना अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। जो देखना चाहूं वही देखूं, जो सुनना चाहूं वही सुनूं, जो बोलना चाहूं वही बोलूं, ये जो स्थूल कर्मेंद्रिय, जो करना चाहूं वही करूं, जहां जाना चाहूं वही जाऊं, सर्व कर्मेंद्रिया क्या मेरे कंट्रोल में है, ये है स्थूल कर्मेंद्रिया। उसके अलावा सूक्ष्म कर्मेंद्रिया क्या है? जो सोचना चाहूं वही सोचूं, जो निर्णय करना चाहूं वही निर्णय करूं। तो ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर आता है इस राज्यों के द्वारा। सो धीरे 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 इस परिवर्तन हम अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं इस मेडिटेशन करते समय। लेकिन करेंगे कैसे अभी, उसका आधार क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे आधार क्या है, किस आधार से हम मेडिटेशन करें। क्योंकि जब भी हम योग करते हैं, योग शब्द का सहज दूसरा अर्थ है याद। योग तो बहुत बड़ा शब्द हो जा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, हम यहां कहते हैं याद है। याद सहज लगता है क्योंकि निरंतर हम किसी ना किसी को याद करते हैं, है ना? यहां परमात्मा को याद करने की विधि को राजयोग कहा है ना। तो याद करना है, किन किन को हम याद करते हैं? मन सहज रूप से किन को याद करती है? किन को याद, कहां मन जाता है? जहां संबंध है वहां, और जहां प्राप्ति होती है, जहां कुछ मिलना होता है ना, वह उनको याद करते हैं, है ना? और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनके प्रति है तो उनको याद करते हैं। चार प्रकार के लोगों को हम याद करते हैं। सबसे पहले जिनका परिचय है, यहां आने से पहले हमारा परिचय नहीं था, अभी परिचय हो गया, तो अभी जब भी आप वापस जाएंगे फिर याद आएगा, हाँ किन किन बहनों से आप मिले, क्या क्या सुना, उनकी याद आएगी, राइट? जहां परिचय है, परिचय के बिना याद नहीं हो सकता। तो परिचय जिन जिन का है तो उनको याद करते हैं। और दूसरे लेवल है संबंध, जिनका संबंध है मेरा, चाहे माता पिता है, फ्रेंड्स है, भाई बहन है, जो भी, जिनके साथ भी मेरा संबंध है, उनको हम याद करते हैं। और तीसरा है स्नेह। संबंधी बहुत सारे होंगे, फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल कजिन्स होंगे या स्पेशल फ्रेंड्स होंगे जिनका आपका वेवलेंथ मिलता है, सोच मिलता है, भावनाएं मिलती है, जिनके प्रति आपका स्नेह ज्यादा है, उनको आप ज्यादा याद करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं जिनसे हमें प्राप्तियां कुछ मिलने वाला होता है तो फिर उनको हम याद करते हैं, है ना। तो इन चारों ही लेवल को अगर परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर सहज रूप से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल है परिचय, परमात्मा का परिचय मिला, कल मिला। कौन है परमात्मा? परमात्मा कौन है कल सुना आप सभी ने, समझा हा? कौन है परमात्मा? क्योंकि परमात्मा के बारे में इतने सारे मत मतांतरे हैं, लेकिन सभी का ये कहना है कि परमात्मा एक है। और कल उषा बहन ने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट करते हुए पूरा समझाया, पर एक परमात्मा कौन है? वो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जिनको संस्कृत में कहते हैं शिव, जो कल्याणकारी मंगलकारी शुभकारी है, बिंदु है, है ना। भले आप गॉड कहे, ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, लेकिन वो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, है ना, परमात्मा का परिचय, है ना। और परमात्मा के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? कौन है परमात्मा हमारा? परमात्मा कौन है हमारा? सिर्फ माता पिता। जो आरती करते थे तो फिर क्या करते थे? कहते हैं तो मात पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ आप हो। सर्व संबंध से हम परमात्मा को याद करते हैं। किस आधार से? अगर एक परिवार वाले एक साथ मिलकर के आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर पति कहे हे भगवान आप मेरे माता पिता हो, तो फिर उनकी जो वाइफ है वो कहेंगी आप मेरे सास ससुर हो, हे भगवान आप मेरे सास ससुर हो, ऐसा कहेंगे? नहीं। पति भी वही कहेंगे तो पत्नी भी वही कहेंगी कि आप माता पिता बंधु सखा आप सब हो। किस आधार से? किस आधार से? शारीरिक आधार से या आत्मा के कनेक्शन से? क्योंकि शरीर का तो अपना अपना अलग अलग संबंध है ना, तो अपने बच्चे भी है, ये भी तो अलग अलग है, अब खुद के भी माता पिता है, लौकिक माता पिता जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, हर एक के माता पिता अलग अलग है। हर एक के लौकिक माता पिता अलग अलग होते हुए भी भगवान को परमात्मा को सभी मिलकर के कहते हैं आप माता पिता हो। किस आधार से? क्योंकि वो आत्मा के माता पिता है, इसीलिए हम आत्माएं हैं और वो परम आत्मा है। हम सोल्स है, वो सुप्रीम सोल है, है ना। तो आत्मा के नाते ये संबंध है। क्यों संबंध जोड़ना जरूरी है? केवल हम ये क्यों ना सोचे कि वो भगवान है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके भगत है, इस संबंध से क्या प्रॉब्लम है? भगवान और भगत क्यों ना सोचे? भगवान और भगत क्यों ना करे सोचे? हम भगवान और बच्चे क्यों सोचे? वो संबंध क्यों जोड़े? डर लगता है? क्वालिटी मिलती है। इन दोनों संबंधों में अंतर क्या है? यहां हम कहते हैं भगवान भगत का संबंध नहीं जोड़िए, पिता और संतान का संबंध जोड़िए। क्यों? भगवान और भगत जब हम सोचते हैं ना, मांगते रहते हैं, हे भगवान ये दे दो वो दे दो बंगला दे दो गाड़ी दे दो एक नहीं तो चार दे दो है? वो गाना भी है ना वो तो है? तो वो स्थूल चीजें मांगते या फिर कुछ मांगते ही रहते, शांति दे दो संतान दे दो नौकरी दिला दो वो दिला दो प्रमोशन दिला दो तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं भगवान से भगत के संबंध में। अगर एक आपके घरों में गाड़ी मतलब गाड़ी होगा उसके ड्राइवर भी है, अगर ड्राइवर को अगर पूछते हैं भाई ये गाड़ी किसकी है, वो ड्राइवर क्या कहेगा? मालिक की गाड़ी है। सारा दिन वो चलाता है लेकिन फिर भी वो नहीं कह सकता ये मेरी गाड़ी है, मालिक की गाड़ी कहता है। लेकिन अगर आपके 5 साल का बच्चा है अगर उसको पूछते बेटा ये गाड़ी किसकी है, वो क्या कहेगा? मेरा है। वो भले उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है लेकिन फिर भी वो अधिकार से कह रहा है कि मेरी गाड़ी है। क्यों? क्यों उसकी गाड़ी कैसे हो गई? वो कैसे हो गई? उनके पिता का उसको समझ है, मेरे मम्मी पापा का जो भी है वो मेरा ही है, अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उसको पता है मैं उनका बच्चा हूं तो उनके पास जो भी चीज है वो मेरा है ना? संबंध का अंतर। तो आपको भगत ही रहना है या संतान बनना है? संतान है ना, संतान है ही है, बनने की बात नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है ही है लेकिन हम भूल गए हैं अभी। बस पुनः फिर से उस संबंध से परमात्मा को याद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार, परमात्मा के पास जो भी है वो मेरा है। वो आएगा, आएगा हा? वो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। जैसे ही मैं संबंध को याद करती हूं, मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ऐसा नहीं कि शांति चाहिए, नहीं चाहिए। अगर बोलेंगे हे बाबा शिव बाबा या भगवान मुझे शांति दो, नहीं, मैं हूं ही शांत स्वरूप क्योंकि मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। जब मांगेंगे इतना सा मिलेगा, जब ये अनुभव करेंगे सागर ही मेरे पास है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? केवल स्मृति और विस्मृति का खेल है। जैसे लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाता है, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाता है, ऑफ करते ही ऑफ हो जाता है, ऐसे हमारा स्विच यहां। केवल ये याद रखना है कि मैं आत्मा कौन हूं और मेरा कौन है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। ऑटोमेटिकली शांति की अनुभूति हो गई, मुझे वहां मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये है संबंधों का कमाल, है ना? तो वहां अथॉरिटी है, वहां नजदीकियां हैं, वहां दूरीपन नहीं है, वह दूर नहीं है, मेरा ही है परमात्मा, मेरा ही है। जब ये महसूस करते हैं ना, साथ साथ वो अनुभव हम करने लगते हैं। और इस संबंध को तीसरे लेवल में हम कैसे लेके जाएं? स्नेह, है ना, प्यार। परमात्मा प्यार का सागर है। वो आवाज कम कर लीजिए भाई जी, वो जो आवाज आ रहा है। वो प्यार का सागर है तो प्यार की अनुभूति वो कैसे गहरा करे? क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना मेडिटेशन, जब बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, एक मिनट में नहीं हम एकाग्र नहीं हो पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहां ना कहां प्रेम की कमी है, स्नेह की कमी है। आप जिनको प्यार करते हैं उनको याद करने के लिए आप कंप्लेन करते, उनकी याद, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। आप कहते हो ऐसे, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं उनको याद करना मुश्किल है आपको? नहीं। यहां क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि प्यार की कमी है। और दूसरी बात है विश्वास की कमी। जब विश्वास बढ़ेगा तो प्यार भी बढ़ेगा। कभी कभी ये डाउट उठता है मन में, भगवान तो सर्वशक्तिमान है लेकिन मैं तेरा बहुत ही साधारण, बहुत सारे पाप कर्म भी इस जन्म में किया हुआ है, मैं तो बहुत ही साधारण हूं, क्या मैं एक सोचने से या फिर एक बार मैं परमात्मा को पुकारने से क्या वो मेरी मदद करेंगे? ये डाउट आएगा, है ना? मदद मिलता है परमात्मा से? मदद मिलता है परमात्मा से? ये डाउट है, ये तो सर्वशक्तिमान है तो मेरी मदद, इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं संसार में, मेरी मदद क्यों करेगा परमात्मा? ये डाउट आएगा? हाँ जी, वो प्रश्न बाद में ले लेते हैं ना, ये पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, अभी इसके कनेक्टेड है। हाँ जी बोलिए। खोज करने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही है, केवल अनुभव करने की बात है। खोज करना ही नहीं है ना, केवल अनुभव करना है। खोज नहीं कर सकते परमात्मा को, जो खोज वही कर सकते जो गुम हो गए हैं, है ना? केवल हम भूले हुए हैं बस परमात्मा को, फिर से वो याद करेंगे मैं कौन मेरा कौन, वो फिर से वो कनेक्शन जुड़ेगा, है ना? तो क्या बात हो रही थी अभी, कनेक्शन जुड़े? हाँ, स्नेह की बात है ना, विश्वास की बात है। विश्वास क्यों कम हो जाता है या विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत नीच समझते हैं, तो इसीलिए मंदिरों में जाकर के हम यही कहते हैं, हे भगवान आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंच से ऊंच हो, लेकिन मैं कल कपटी कामी आपके चरणों की धूल हूं। इतना अंतर हम बताते थे। हाँ ठीक है, अपने आप को निर्माण, भगवान के सामने नम्र होने के लिए वो कहना ठीक है, लेकिन सचमुच ऐसे समझना, फिर वो दूरियां बढ़ जाएंगी, है ना? अगर आपके पिता के पास जाकर के, पिता तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे रेस्पेक्टेड है समाज में, बहुत सम्मान है, लेकिन उनके पास जाकर के बोले पापा आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं ना बहुत, है ना, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं कल कपटी कामी चरणों के धूल हूं, आपके पिता को अच्छा लगेगा? आपके पिता को अच्छा लगेगा? आपके पिता के एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? मेरे बच्चे मेरे से भी श्रेष्ठ हो, मेरे से भी अच्छा नाम कमाए, है ना? तो ये है, परमात्मा इतने ऊंचे से ऊंचे हैं, मैं आत्मा भले इस जन्म में बहुत सारे कर्म किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन ओरिजिनली मैं आत्मा, ओरिजिनली जब परमधाम से उतरे थे वो आत्मा ओरिजिनली पवित्र, ओरिजिनली पीसफुल, ओरिजिनली शक्तिशाली थी, लेकिन जन्म लेते 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 कपड़ा गंदा हो गया बस, है ना? फिर से साफ करना है, फिर से साफ करना है आत्मा को, तो फिर परमात्मा के साथ ओरिजिनल जो मैं हूं उसकी स्मृति को रखते हुए, उस स्वमान में रहते हुए फिर से पापा को याद करते हैं तो फिर साफ होता जाएगा। ये है स्नेह, ये है विश्वास, है ना? और फिर इस अनुभूति से, इस कनेक्शन से प्राप्तियां क्या है, लास्ट लेवल के प्राप्तियां? केवल प्राप्तियों के लिए परमात्मा को याद करना है? या फिर स्नेह के लिए याद करना है। जो तीसरा लेवल है स्नेह, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह के आधार से अगर परमात्मा को याद करते हैं ना, वो बहुत गहरा है। लेकिन प्राप्तियों के लिए याद करते हैं ना, तो वो टेम्पररी हो जाता है। कैसे? जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब परमात्मा को ज्यादा याद करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं है तो परमात्मा को भूल ही गए। जब मैं पढ़ाई पढ़ रही थी बैंगलोर में, इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो हमारे कॉलेज के जो गली है लास्ट में एक गणपति मंदिर था। उस गणपति मंदिर में भीड़ कब होती थी पता है? सारा साल भीड़ नहीं होती थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे, भगवान मेरा पूरा पेपर अच्छा चले, फिर रिजल्ट्स किस टाइम पे, बस पास करा दो, पास करा दो, मैं 101 नारियल तोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो अलग अलग मन्नतें मानते थे। लेकिन सारा साल फिर भूल गए। हमारी भी याद ऐसा है। अपने आप को पूछिए, क्या जब मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं तब मेरा मंदिर का चक्कर बढ़ जाता है, तीर्थ यात्राएं बढ़ जाती है, और सारा साल भूल गए, है ना? तो यह निरंतर यात्रा, इसको हम कहते याद की यात्रा। उन तीर्थ यात्राओं की जरूरत नहीं, याद की यात्रा, परमात्मा के साथ यात्रा करने से हमारी जो संकट है ना, वो वहीं नष्ट हो जाएगा। जब प्रॉब्लम उठा तो जैसे ही मैं परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा तो प्रॉब्लम का सलूशन मुझे आ गया, है ना? ऐसा हम ये नहीं कहते हैं मेडिटेशन करने से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी तो सॉल्यूशंस भी जल्दी मिल जाएगा। क्यों? हम परमात्मा के को साथ रखते हुए उनके गाइडेंस के अनुसार जब हम चलेंगे तो फिर सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अभी परमात्मा से मिलता क्या है और नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई कोई कहते हैं परमात्मा पत्ता पत्ता हिलाने वाला भी परमात्मा है, उनके डिसीशन के बिना तो ये पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा है क्या? है परमात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये हमें समझना जरूरी है। उस आधार से हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। जो कहते हैं पत्ता पत्ता हिलाने वाला भगवान है, ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग क्यों है? सर्वशक्तिमान है तो वहीं से होता है, पत्ता पत्ता हिलाने वाला वो है। इस ज्ञान सरोवर की बात अगर कहें, कितने सारे पेड़ हैं? एक एक पेड़ में कितने पत्ते हैं? और फिर पूरे माउंट में कितने पेड़ हैं? पूरे राजस्थान में कितने पेड़ हैं? पूरे भारत में कितने पेड़ हैं? पूरे विश्व में कितने पेड़ हैं? एक एक पत्ते को ही डायरेक्शन दे रही है, तुम ये ऊपर जाओ, तुम गिर जाओ, तुम साइड में जाओ। परमात्मा का काम है वो? एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम क्या है? पॉलिसीज बनाना, नए डिसीशंस लेना, कंपनी के उद्धार के लिए जो क्या परिवर्तन करना है, जो हायर लेवल के डिसीशंस है वो करना मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है। एसी कैबिन में बैठना और अपने जो भी है ऊपर के लेवल, उनको दिन भर काम करने की जरूरत नहीं है। दिन में एक आध घंटा भी काम कर लिया, वो उस लेवल के हैं, राइट। तो अगर छोटा सा मशीन खराब होता है किसको बुलाएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे या मैकेनिक को बुलाएंगे? मैकेनिक को बुलाएंगे, राइट। तो अभी पूरे संसार के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? परमात्मा है, राइट। अभी परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा का काम वो है जो और कोई कर नहीं सकता, वो काम परमात्मा का है। अगर इंसान कर लेता है तो परमात्मा उसके करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो परमात्मा का काम क्या है जो इंसान नहीं कर सकता? पतितों को पावन बनाना। जो कीचड़ में चला गया, कीचड़ में चला, उसको ऊपर उठाने के लिए कौन चाहिए? जो कीचड़ से ऊपर है वही उस व्यक्ति को कीचड़ से बाहर निकाल सक। जो खुद कीचड़ में है तो दूसरे व्यक्ति को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकता। हम सभी कीचड़ में है, कीचड़ में है, कलयुगी दुनिया में है, है ना। सभी परफेक्ट तो नहीं है, राइट। कोई ना कोई कमी कमजोर या कोई ना कोई है ही है, सभी है, जनन मरण चक्र में आ रहे हैं। तो फिर परमात्मा की आवश्यकता तब है जब हम आत्माओं को अपलिफ्ट करने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, जो वो काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, यहां मांगने की बात नहीं है, केवल उनके गुण और शक्तियों की अनुभूति की बात है, या स्थूल चीजें मांगने की बात नहीं है। जो भी दूसरी दूसरी चीजें हैं, अपने कर्म के आधार से, भाग्य के आधार से मुझे मिलेगा, है ना। तो अभी विधि क्या, ये चार विधि, चार आधार हो गया, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, या आधार। इसके आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं। और विधि क्या है परमात्मा को याद करने की, या मेडिटेशन करने की विधि क्या है, कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न होगा। विधि है कि कोई भी जगह पर आराम से बैठे, जरूरी नहीं है कि जमीन पर ही बैठे, क्योंकि कोई भी शारीरिक तकलीफ अगर जब देंगे, दर्द होगा, अगर मुझे टांगों में दर्द, या फिर जमीन पर भी आराम से बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जो आपको कंफर्टेबल है, ये है पोजीशन। बैक बोन स्ट्रेट रखना है, है ना। बैकबोन क्यों स्ट्रेट रखना है? क्योंकि अलर्टनेस रहेगा, क्योंकि वो फिर कनेक्शन जोड़ने में इजी हो जाता है। ये है फिजिकल पोश्चर। और समय, आप जैसे अमृत वेले का योग हम कहते हैं, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर, वैसे तो अमृत वेला 2 बजे शुरू हो जाता है सुबह, लेकिन फिर हर व्यक्ति 2 बजे तो नहीं उठ सकता, तो 4 बजे एटलीस्ट 4 to 4:45 यह अमृत वेला योग हम लोग करते हैं। अमृत वेला योग और दिन भर के योग में क्या अंतर है? क्योंकि अमृत वेले योग में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है वो, क्योंकि रात भर की नींद से ब्रेन रिलैक्स्ड हुआ होता है, एक पॉइंट। और दूसरे पॉइंट ये है, पूरे जो कलयुगी दुनिया का संसार है, तमोगुणी वाइब्रेशंस थोड़ा सा थमा हुआ होता है, क्योंकि जो भी गलत काम है, चोरी, डकैती, ये सब आधी रात को हो जाता है, राइट। 4 बजे सब सोने जाते हैं, जो पार्टियां करते करते, सब तमोगुणी वाइब्रेशंस थमा हुआ होता है। 4 to 4:45 बहुत शुद्ध वातावरण होता है, इसलिए बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है या ब्लॉकेजेस वाइब्रेशन वातावरण में ब्लॉकेजेस ना होने के कारण से बहुत जल्दी कनेक्शन मिल जाता है अमृत वेले के टाइम पे, है ना। दिन भर भी कर सकते कभी भी, लेकिन फिर अमृत वेला बहुत जल्दी ज्यादा अनुभव हम कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ये है कि सुबह रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले सब कुछ वाइंड अप करके परमात्मा को 2-3 मिनट या 5 मिनट भी याद करके जब हम सोएंगे सारी रात की नींद बहुत फ्रेश रहेगा। नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे मन बुद्धि से, वही उन्हीं यादों के साथ जब हम सोते हैं तो वही सपने वही बातें ब्रेन में घूमता रहेगा। इसलिए डिटैच करके फिर सोना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी बात है, जब जैसे ही उठते हैं आप सुबह अमृत वेले, भले आपको अभी आदत नहीं है उठने की, लेकिन कभी भी आप उठते हैं 5 बजे उठते हैं 6 बजे उठते हैं, तो उठते ही पहले के 15-20 मिनट्स जो है वो उस समय परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस समय सारी रात की नींद से जब जैसे ही उठते हैं ना, आप उठते ही फोर्थ गियर में नहीं जाते हैं, उठते ही बहुत भागना शुरू नहीं करते, अनलेस एंड अंटिल आप लेट नहीं हुए हैं कॉलेज में जाने के लिए, लेट नहीं हुए हैं आप भागेंगे नहीं, धीरे धीरे से उठेंगे बैठेंगे फिर वॉशरूम जाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे शुरू करके फिर स्पीड पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उठते ही मन, चेतन मन फुल्ली एक्टिव नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव नहीं होता। उस समय जब आप मेडिटेशन करेंगे, कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाने में बहुत इजीली मदद मिलेगा। तो इसीलिए इनिशियली उठते ही जो 10-15-20 मिनट के अंदर, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करिए उस समय। उठ के जरूरी है वॉशरूम जाइए, थोड़ा सा हाथ मुंह धो लिया, धो करके बैठ गए, बैठ करके वो 15 मिनट्स साइलेंस में परमात्मा को याद कर, आप देखना सारे दिन के लिए जो चार्ज हो गई ना आत्मा, आपके व्यवहार में आपके इसमें सब कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये है टाइम और पोजीशन। और मानसिक रूप से सोचना क्या है, और उसके पहले हम हमेशा कहते हैं यहां ये ओपन आई मेडिटेशन है, यहां आंखों को बंद नहीं करना है कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं 2-3 मिनट 5 मिनट आप पूरी तरह फोकस कर सकते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु फोकस कर लेंगे, लेकिन 4-5 मिनट के बाद, 4-5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट के बाद ही मन भटकना शुरू हो जाता है। क्यों? अगर थोड़ा साइकोलॉजी उसको समझे, खुले आंखों से मन क्या सोचता है, केवल जो दिखाई दे रहा है ना इन्हीं के बारे में सोचता है, लेकिन आंख बंद करते ही ये जो लिमिटेशन है वो डिसॉल्व हो गया, तुरंत मन हॉल के बाहर चला जाएगा, आपके घर में यहां करना है वो करना है, वो तुरंत बंद आंखों से लिमिटेशन डिसॉल्व हो जाता है, कुछ भी किसी भी दुनिया में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए आप ये रेकमेंड किया जाता है आंखों को खुला रख करके, ओपन आई आईज को ओपन रख करके आप मेडिटेशन करें, लेकिन ओपन रखना है पूरी तरह ओपन, ऐसे नहीं ऐसे फाड़ के, ऐसे नहीं है ना। तो जब भी योगियों का चित्र देखते हैं, योगियों के चित्र देखते हैं, गुरु नानक जी के, महावीर जी, बुद्ध, इन सभी के चित्र जब देखते हैं उनके आंख कैसा है, हाफ क्लोज्ड है ना, आधा क्लोज्ड है, हाफ ओपन है, ऐसे मेडिटेशन करते समय भी हमारे आंख हाफ ओपन सहज रूप से, इस पर भारी वो प्रेशर नहीं डालना है आईलिड्स पर सहज रूप से, क्योंकि देखते हुए भी मेरा अटेंशन पूरी तरह मेरे ऊपर है ना। जब ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर है तो ऑटोमेटिकली आंख पूरा नहीं खुलता, आंख ही खुल जाए क्योंकि अटेंशन पूरी तरह मेरा अंदर है। और ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आंख खोल के ही रखना है, नहीं, बीच बीच में आपको बंद करना है, बंद करिए, लेकिन लंबे काल तक बंद नहीं रखना। जैसे आपको लगता है कि मन भटक रहा है, फिर से खोल लीजिए। तो खुले आंखों में कंट्रोल करना इजी है, बंद आंखों में जैसे हाँ ठीक है, बीच बीच में बंद करना है करिए, कुछ सेकेंड्स के लिए बंद करिए फिर खोलिए, ठीक है, ये है। और अभी आंतरिक रूप से क्या सोचना है, क्या करना है, क्योंकि ये पूरी तरह ये आंतरिक विधि है ना, मेडिटेशन तो अंदर की विधि है, ये केवल सपोर्ट हम ले रहे हैं। और ये जो भी हम म्यूजिक कॉमेंट्रीज लाइट्स डिम किया जाता है, कॉमेंट्रीज दिया जाता है, ये सब कुछ टेम्पररी आपका सपोर्ट सिस्टम है। आपको इतनी आदत बना लेनी है मेडिटेशन करने की, आप भीड़ में भी आप मेडिटेशन कर पाए। ये थोड़ा बहुत स्टार्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ये सपोर्ट है बस। हम कर्म योगी है ना, कर्म करते समय भी हम योग लगा सके, भगवान को याद कर सके, ये आदत डालनी है। उसके लिए बैठ करके याद करना बहुत जरूरी है, वो फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर आंतरिक रूप से हमें करना क्या है, मन में तीन चीजें हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, सोचना कि बाहरी जो हम सोच रहे हैं इसके बारे में, उसके बारे में, कर्म के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, इसको डाइवर्ट करके, डिटैच करके अंदर के तरफ डाइवर्ट करना है। सोचना खुद के बारे में, आत्मचिंतन करना शुरू करना है। मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, प्रकृति के बीच में हूं, ये सोचना स्वचिंतन आत्मचिंतन करना शुरू करना है ना। और दूसरी बात विजुलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रुकुटि के बीच में विराजमान हूं, तो क्या आप खुले आंखों में आप विजुलाइज कर सकते हैं कि सचमुच मैं आत्मा यहां भ्रुकुटि के बीच में हूं, वहां प्रकाश एक टॉर्च की तरह, सितारे की तरह वो अंदर है, वो प्रकाश वहां से फैल रहा है। यह अभ्यास से होगा। अगर आपको आंख खुला रख करके वो विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें, आप विजुलाइज करने की कोशिश करें, वहां एक स्टार है ब्रेन के बीच में और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विजुलाइजेशन जरूरी है, क्यों, विजुलाइजेशन के बिना अनुभूति नहीं होगी, है ना। और ये विजुलाइजेशन भी रियलिटी है, हम रियलिटी के तरफ जा रहे हैं। आत्मा रियल है ना, वास्तविकता है ना, मैं तो शरीर एक कॉस्ट्यूम है, लेकिन मैं आत्मा रियल हूं, रियलिटी के तरफ हम जा रहे हैं, राइट। तो इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कोई तो विजुलाइज ये भी कराते हैं, मैं झाड़ू हूं, आप सब समझो आप एक ट्री हो, ये सब अनरियल है। आप ट्री तो नहीं हो सकते, एक झाड़ तो नहीं हो सकते ना, वो नेचर है। हम रियलिटी के तरफ जा रहे हैं, आत्मा हूं मैं, रियल हूं, है ना, वास्तविकता है ना? इसको विजुलाइज करना जरूरी है। और तीसरी बात यह है फील करना, जैसे ही हम कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, क्या मैं शांति की अनुभूति कर रही हूं, फील करना है ना। जैसे कि अगर आपको कहे ये विजुलाइज करना कि आपके हाथ में एक नींबू है, उस नींबू को काट लीजिए, हाफ नींबू आपके पास है। अभी विजुलाइज करे कि वो नींबू को मैं चाट रही हूं, मैं टेस्ट कर रही हूं नींबू को। क्लियरली विजुलाइज करिए, मैं नींबू को टेस्ट कर रही हूं। कुछ परिवर्तन दिखा आपके मुंह में? सलाइवा, राइट। फिजिकली रियलिटी में तो आपने नींबू नहीं खाया, केवल विजुलाइज किया, बॉडी में वो रिएक्शन दिखाई देता है, राइट। ये है पावर, विजुलाइजेशन और महसूस करने की शक्ति का पावर। और हमें इन शक्तियों को रियलिटी के तरफ ले जाना है, रियलिटी से दूर नहीं। रियलिटी क्या है? मैं आत्मा रियल हूं, मेरे गुण रियल है, शक्तियां रियल है, मैं मुझ आत्मा के पिता परमात्मा वो भी रियल है, है ना। जितना रियलिटी के तरफ लेते जाते हैं, वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस? फिर हम अच्छी तरह बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के बाद कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे। मेडिटेशन से पहले अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, 10 साल का बच्चा तो डिपेंड करेगा कितना समझ है उसको ना। बच्चों को एक जगह पे बिठाना इट्स अ चैलेंज। आंखों को हाँ खुला रखना है, हाफ ओपन रखना है, पूरा ओपन नहीं रखना है, क्योंकि फिर पूरा ध्यान अंदर के तरफ होगा, देखते हुए जैसे नहीं देख रहे हैं, महसूस नहीं हो रहा है पूरा ध्यान, तो इसलिए आंख हाफ ओपन। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने मिस किया था। ये है, अगर आपको आंख भले आपको अब इसको गर्दन को आप स्ट्रेन नहीं दीजिए, ठीक है, सहज रूप से, क्योंकि अगर स्ट्रेन देंगे बहुत ऊपर होगा तो फिर आप फोकस करना, क्योंकि सहज रूप से जो इन आंखों के लेवल में जो भी है वहां बैठ करके शायद ये थोड़ा सा ऊपर, जो भी आपको कंफर्टेबल होगा तो फोकस कर सकते हैं, उनके ऊपर आंखों को फिक्स कर सकते हैं। आप यहां यहां रख लीजिए, कोई बात नहीं, माइक यहां रख लीजिए। हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा ध्यान उस ज्योति पर नहीं, ध्यान उस ज्योति पर होना चाहिए, फोकस। आंखों को वहां फिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंखों को एक जगह पर फिक्स रखने से उसकी मदद मन को एकाग्र करने में मदद मिलता है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई बिंदु नहीं है, वो चित्र नहीं है, मुझे केवल एक पॉइंट देख लेना है कि वहां मैं अपने आंख फिक्स कर लो, लेकिन वहां से मुझे यहां अगर आप फोकस भी कर लेंगे आंखों को, लेकिन वहां से तो एनर्जी नहीं मिल रही है आपको, ये तो केवल चित्र है, आपको एनर्जी कहां से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा, राइट। केवल आंखों को फिक्स रखना है वहां बस, लेकिन पूरा ध्यान यहां और वहां। ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, यहां माइक है, यहां आ जाएंगे।
जैसे आपने कहा कि सुबह योग करते हैं, उसके बाद जैसे ही वर्क प्लेस पे जाते हैं तो बीच में याद नहीं रहता, मेरे साथ कई बार होता है, गुस्सा किया उसके बाद याद आता है कि नहीं मुझे तो शांत रहना है, ठीक है। तो अभी वो एक स्टेज, तो जैसे हम कर्मयोग में रहें वो स्टेज तो बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगी, तो अभी कुछ
बहुत प्रैक्टिस, ये नहीं आप डर नहीं पैदा करना कि बहुत प्रैक्टिस के बाद, नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस आती जाएगी। जैसे आप मान लीजिए आपने जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं किया, राइट, आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, एक दिन में मसल डेवलपमेंट तो नहीं होगा, राइट, रोज आपको एक्सरसाइज करना होगा आधा घंटे के लिए, तब जाकर के धीरे 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 बॉडी में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मेडिटेशन है, जिस रोज अगर आप करेंगे तो फिर वो चेंजेस दिखाई देने लगता है। एक्सरसाइज भी 15 दिन में एक बार एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, जो आप चंद दिन देखना चाहते हैं आपके शरीर में चेंजेस, वो दिखाई देना नहीं दिखाई देगा। रोज करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, तब जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट दिखाई देता है। रोज की बात है, रोज अगर आप करेंगे तो फिर भले आप एक घंटा दो घंटा भी ना दें, कुछ मिनट, 24 घंटों आप इतने बिजी है जो 24 घंटों में से आधा घंटा ना निकाल पाए, हाँ, तो आधा घंटा तो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप कर सकते हैं। जी,
थैंक यू, ओम शांति।
मिनिमम टाइम ऑफ मेडिटेशन एंड मैक्सिमम टाइम, आपको जितना टाइम है, एक मिनट, 30 seconds, 5 minutes या 2 hours, आपको जितना टाइम है। तो बीच बीच में जब हम योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो 1 minute का होता है, जो आत्मा 1 minute में रिचार्ज हो जाती है। लेकिन सुबह थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करे अच्छा है, एटलीस्ट मिनिमम 20 minutes।
ये 2007 से आउट ऑफ लिंग में योगा करता, एक्सरसाइज करता, जैसा 20 मिनट में ऐसा आंख लगा के ध्यान करते हैं तो उसे मन कहीं भटकता है, तो कैसा वहां सिखाते हैं कि
पूरे सेशन सुना आपने अभी?
हाँ
हाँ, तो अभी अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस।
ओम शांति दीदी। दीदी, इन द सेशन जिसमें हमें आत्मा के संस्कार बताए थे, दो संस्कारों के मीनिंग में मुझे कंफ्यूजन है, एक सुख और एक आनंद, बिकॉज इन माय अंडरस्टैंडिंग बोथ आर सेम, व्हाट्स द डिफरेंस इन बोथ द संस्कार, सुख एंड आनंद?
आत्मा के 7 गुण हैं, 7 गुणों में से 2 गुण हैं सुख और आनंद। आनंद माना परम आनंद, इसका कोई अपोजिट नहीं है। जैसे शांति का अपोजिट अशांति, सुख का अपोजिट दुख, है ना, तो वो कोई भी इंसिडेंट ऐसे हो जाता है तो दुख होता है। लेकिन आत्मा की शक्ति इतना, सुख अपना अंदर इतना भरे तो ये दुख के वाइब्रेशन भी अफेक्ट ना करके मैं हमेशा वो सुख की स्थिति में रहूं। सुख है कर्मेंद्रियों के आधार से, अतीन्द्रिय सुख जिसको परम आनंद कहते हैं, इंद्रियों के आधार से सुख नहीं, लेकिन यहां के आधार से मैं सुख की अनुभूति कर रही हूं, वो है आनंद। आत्मा का ही गुण है, इंद्रियों का गुण नहीं है, लेकिन हम एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, ऑन कर लीजिए उसको।
ओम शांति। कल एक सेशन में दीदी ने बताया कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, जब मृत्यु होता है तब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन वो प्राणी मात्राओं में नहीं जाता, वो 84
वो फिर वो कर्मों की, इसमें कल के सेशन में आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है।
तो मेरा एक क्वेश्चन था कि वो यदि मनुष्य के ही शरीर में जाता है तो जब आबादी बढ़ती है तब क्या होता है, मतलब आत्माएं की संख्या बढ़ती है या क्या उसमें?
ओके, ये क्वेश्चन इस सेशन के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कालचक्र जब आप सुनेंगे सेशन उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कर्मों की गुह गति में भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि परम धाम से आत्माएं जब उतर रही है कलयुग अंत के समय तक आत्माएं उतर रही है, तो इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन उसकी डिटेल आपके, क्योंकि शॉर्ट में आंसर दे रही हूं आपके कंफ्यूजन बढ़ रहा है, राइट? तो इसलिए आप कालचक्र का लेसन आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसका उत्तर आपको स्पष्ट मिल जाएगा, ठीक है? मेडिटेशन के कनेक्टेड होगा तो हाँ। राजयोग सीधा बैठ जाए। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे आप सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे और फिर महसूस करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब अपना मोबाइल खोलिए, मोबाइल निकालिए, सभी जिनके पास भी मोबाइल है कैमरा खोलिए, सेल्फी मोड में लीजिए, अब अपने आप को देखिए। बचपन से लेकर अब तक रोज आप अपने चेहरे को देखते आए, केवल शारीरिक फीचर्स को देखते आए, उस रीति से आप अपने आप को पहचानते आए, लेकिन अभी देखें उस भ्रुकुटी के मध्य में एक सितारा चमक रहा है, वो चमकता हुआ सितारा मैं हूं। देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें, उस भ्रुकुटी के मध्य में जो सितारा बैठा हुआ है अनादि अविनाशी आत्मा मैं हूं। जो अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं, प्रकृति के मध्य से मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहा है। स्थूल शरीर डिसॉल्व होता जा रहा है, केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। आत्मा की चमक धीरे से अपने मोबाइल फोन को नीचे रखें। उसके बिना वे महसूस करने की कोशिश करें, सचमुच में आत्मा एक चमकता हुआ सितारा इस शरीर का राजा हो। ये शरीर केवल एक वस्त्र है जिसको मैं धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। किन कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा धीरे से मन बुद्धि को ऊपर की तरफ ले चले। जो मेरा निजी घर परम धाम मुक्ति धाम शांति धाम है, मुझ आत्मा का अपना ओरिजिनल घर स्वर्णिम लाल प्रकाशित दुनिया। जहां मेरे जैसे अनेक अनेक चमकते हुए सितारे, उनमें से एक महाज्योति मेरा पिता उनके सानिध्य में जाते ही का प्यार उनकी शक्ति महसूस हो रहा है। वो मेरा पिता है, मेरा है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान। ये पूरी तरह स्वीकारें अपने आप में, सचमुच मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूं। इस बात को एक्सेप्ट करें कंप्लीटली। मेरे पिता के पास जो भी है वर्षे के रूप में मुझ आत्मा को मिल रहा है, मैं अधिकारी हूं। शिव बाबा प्रेम का सागर है, परमात्मा का प्रेम मुझ आत्मा को हील कर रहा है। जन्म जन्मांतर के दुख दर्द बोझ कुछ नष्ट होता जा रहा है, परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। नॉन जजमेंटल प्रेम है, मैंने जो भी कर्म किए हैं उसको ना देखकर केवल मेरा ओरिजिनल स्वरूप देखते हैं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और परमात्मा के ये शुद्ध प्रेम मुझ आत्मा को शुद्ध बना रहा है। परमात्मा जैसे बना रहे हैं, महसूस करें मैं आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है, हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं, कंबाइंड। परमात्मा के सभी गुण शक्तियां और ज्ञान मुझ में ट्रांसफर होता जा रहा है और मैं आत्मा उसको अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं, अपने आप में भरता जा रहा हूं। संपूर्ण होती जा रही हूं। अपने आप में इन सभी गुणों को शक्तियों को भरकर वापस इस कर्म क्षेत्र पर अपने शरीर में लौटती हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान होकर इन गुण और शक्ति पत्तियों की प्रकंपन चारों तरफ फैला रही हूं। मैं निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं। शिव बाबा से ले रही हूं और इस संसार को दे रही हूं। शिव बाबा से ले रही हूं और इस संसार को दे रही हूं। शिव बाबा से ले रही हूं और इस संसार को।